AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 28 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की नई प्रधानमंत्री साने टकाइची ने दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मसौदे में खनन और प्रसंस्करण के जरिए महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अमेरिका का लक्ष्य है कि वह इस क्षेत्र में चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता से छुटकारा पा सके। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात टोक्यो में हुई, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और जापान के द्विपक्षीय संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अब टोक्यो में व्यापारिक नेताओं से मिलने के बाद दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ट्रंप ने कहा कि वह इस बैठक के जरिए चीन के साथ व्यापारिक तनाव को सुलझाना चाहते हैं। वहीं माइनिंग एंड एनर्जी यूनियन का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण इलाके में हुई एक घातक खदान विस्फोट की घटना ने सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी को उजागर किया है। न्यू साउथ वेल्स से सुदूर पश्चिम कोबार इलाके में तड़के सुबह एक भूमिगत खदान में विस्फोट से दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। विस्फोट के तुरंत बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं में से एक, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया, खदान से निकालने के थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ दिया। एक दूसरी महिला को कान की चोट और सदमे के कारण एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। माइनिंग एंड एनर्जी यूनियन के जिला अध्यक्ष बॉब टीम्स ने कहा कि उनकी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि चांदी, सीसा और जस्ता निकालने वाली खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को कोयला खनिकों के समान सुरक्षा उपलब्ध हो। दूसरी तरफ गृह मंत्री टोनी बर्क ने पुष्टि की है कि नाउरू द्वीप ने ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित आप्रवासियों के पहले समूह को स्वीकार कर लिया है, जिसमें तथाकथित NZYQ समूह के सदस्य भी शामिल हैं, जिनके वीजा उनके चरित्र के आधार पर रद्द कर दिए गए थे। अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू में गैर नागरिकों के पुनर्वास के लिए $408 मिलियन का अग्रिम भुगतान करने का वादा किया था और 30 साल के लिए किए गए इस समझौते में ऑस्ट्रेलिया $2.5 बिलियन से अधिक खर्च करेगा। वहीं मंत्री बर्क ने एक बयान में कहा कि वीजा रद्द होने का मतलब है कि व्यक्ति को देश छोड़ देना चाहिए। वहीं विक्टोरिया के सुधार मंत्री ने एक विवादित युवा न्याय केंद्र को दोबारा खोलने के निर्णय का बचाव किया है और कहा है कि राज्य सरकार समुदाय की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। माल्म्सबरी यूथ जस्टिस सेंटर, जो कभी कर्मचारियों पर हमलों, दंगों और कैदियों के भागने जैसी घटनाओं से त्रस्त था, इसे 2 साल बाद फिर से खोला जा रहा है। मध्य विक्टोरिया में स्थित यह केंद्र पहले इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि हिरासत में युवाओं की संख्या घट गई थी और उस दौरान नई आधुनिक और विशेष रूप से तैयार सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी थी। सुधार मंत्री एनबर एर्डोगन ने कहा कि यह केंद्र अब राज्य के नए जमानत कानूनों के तहत हिरासत में रखे जाने वाले युवाओं को रखने के लिए फिर से खोला जाएगा। दूसरी तरफ दो सिद्ध बलात्कारी स्टीवन बॉन डे बेल्डे को ऑस्ट्रेलिया का वीजा देने से इनकार कर दिया गया है, जिससे वह अगले महीने एडिलेड में होने वाली बीच वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाएंगे। यह चैंपियनशिप 14 नवंबर से शुरू होगी। इस डच ओलंपियन खिलाड़ी को साल 2016 में 4 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जब उसने फेसबुक पर मिली एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के 3 मामलों में दोष स्वीकार किया था। ये अपराध अगस्त 2014 में हुए थे, जब वॉन डे बेल्डे की उम्र 19 साल थी। गृह मंत्री टोनी वर्क ने कहा कि फेडरल सरकार ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, ताकि लोग अपने समुदायों में सुरक्षित महसूस कर सकें। अब खबरें भारत से। देश और दुनिया में 4 दिनों तक चले लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्ध अर्पित करने के साथ हुआ। यह पर्व पूरे देश में उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया गया। बिहार से लेकर दिल्ली तक सभी छठ घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण भजन, पारंपरिक गीतों और पूजा अर्चना से गुंजायमान रहा। सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आस्थावानों की भारी भीड़ देखी गई। भक्ति की इस लहर में राजनीति और भोजपुरी फिल्म जगत के कई चेहरे भी शामिल नजर आए। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए थे। वहीं बिहार में यह पर्व केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि इस बार चुनावी माहौल ने इसमें राजनीतिक रंग भी घोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी किया, जिसकी शुरुआत में उन्होंने भोजपुरी भाषा में छठ की बधाई दी। इसी के साथ 28 अक्टूबर के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।